हम पीछे बात कर रहे थे शुक्र की, और उसी जज्बात को हमने अपने मुहासबे में लाना है कि जैसे कि हमने अभी तक माँ बाप और भाई बहनों तक बात की थी, अब आप देखिए कि जब इंसान एक माँ बाप के प्यारे घर से फिर दूसरे घर में आता है, उसके बाद फिर शुक्र के जज्बात कैसे पैदा हो सकते हैं। बस दफ़ा जवानी की इब्तदाई घड़ियाँ होती हैं, 2, 4, 10 सहेलियाँ मौजूद हैं, उनमें से किसी एक की शादी हो गई, रिश्ते आने शुरू हो गए, हो सकता है कहने वाले का कोई भी नहीं आ रहा। इस उम्र में फिर डिप्रेशन कैसे शुरू होता है, लड़कियों को ये खौफ शुरू हो जाता है कि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं आता, और माँ बाप को भी आने लगता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह शैतान हमें ट्रैप करता है। वो दिल जो अल्लाह की याद के लिए था, अल्लाह के शुक्र के लिए था, अल्लाह की मोहब्बत के लिए था, उसमें इतना गंद भर देता है, डिप्रेस करता है कि वो दिल के सुराख बंद हो जाते हैं। हम तो कहते हैं ना 40s में इंसान के वेंस वीक हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं समझती हूँ कि ये हमारी आदत का नतीजा होती है। बेटी बड़ी हो रही है, पता नहीं इसका क्या होगा, पता नहीं कोई रिश्ता आता है कि नहीं, शक्ल भी वाजबी है, जिस्म भी भारी है, कर्द भी ऐसा है, फिर खौफ शुरू हो जाता है, फिर तकाबुल, अच्छा ओ भाई की बेटी का भी हो गया, ओ अच्छा बहन का भी हो गया, अच्छा फलां दोस्त का भी हो गया, फिर ये खौफ शैतान दिलाता है। हालांकि हम कभी नहीं सोचते कि जिस उम्र में बाज़ औक़ात लड़कियां शादी होने के बाद दोबारा लौटा दी जाती हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है, शादी हुई, नहीं निभी, 2-4 साल रही, वापस वो लड़की आ गई अपने माँ के घर में, और उसकी साथी अभी कंवारी बैठी हैं। आप बताइए कौन सी बेहतर है, जो पलटा दी गई, जो रिजेक्ट कर दी गई, या जो अभी कंवारी बैठी है। इंसान क्यों शुक्र नहीं करता? बड़ी उम्र के साथ अगर ये खौफ आता है कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, तो शुक्र कीजिए अल्लाह ने इस उम्र तक आपको किसी सदमे से बचाया हुआ है। और कई ऐसी हैं जो चली गई और वहाँ हर दिन जीती हैं और हर दिन मरती हैं। हर लम्हे अपने हाल पे शुक्र अदा कीजिए, और फिर अगर रिश्ता हो गया तो फिर तकाबुल शुरू। जिंदगी से ना शुक्री निकाल देना तो सारे नफसियाती डॉक्टर्स ख़त्म हो जाएं, मैं पूरे शौर से कह सकती हूँ। आपको पता है कि आज के दौर की साइकिक जो है ना, यानी आजकल उतनी जिस्मानी बीमारियाँ नहीं है जितनी नफसियाती बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ। और आजकल के जो डॉक्टर्स हैं ना, मैं खुद जानती हूँ, मेरी एक बहुत करीबी साथी थी, तो उनके ख्याल में उनको डिप्रेशन था, $100 पर आवर के डॉक्टर के पास उनके अपॉइंटमेंट्स होते थे, और वो जाती थी और डॉक्टर उनसे क्या कहता था, बातें करो, अच्छा सुनाओ तुम क्या सोचती हो, सारी बातें उनकी सुन लेता था। अब इंसान की फितरत है, जब अपने दिल की बातें सुना देता है तो दिल हल्का हो जाता है, तो फिर उसके बाद 2-4 बातें कोई ऐसी हल्की फुल्की करके कहता था, नाउ यू फील बेटर, कहती हाँ मैं पहले से बेटर हो रही हूँ। जाहिर है जब $500 दे के आएंगे आप 5 घंटे बातें करने के, जेब भी हल्की हुई, दिल भी हल्का हो गया। मैं उसे कहती थी, तुम उसको 500 देती हो, हम तो तुमसे कुछ नहीं मांगते, तुम इधर आके बैठो, और वही हुआ। आज पूरे शौर से कह सकती हूँ कि कुरान ने उसको बिल्कुल एक नई जिंदगी दी। बात करती है तो रोती है कि मैंने कितना माल लुटाया डॉक्टर्स को। मैं कहती हूँ सबके दफ्तर बंद हो जाएं अगर लोगों को शुक्र करना आ जाए। मैंने परेशान नहीं होना, मैंने दुखी नहीं होना, मेरी किस्मत में जो है वो मिलके रहेगा, आता है सुकून। हम किस खौफ में, हाय मेरे हिस्से की कोई चीज ना ले ले। चलें बड़ी बातें तो छोड़ें, दावत में खाना खुलता है ना शादी का, तो यही गम होता है मेरे हिस्से की बोटी कोई दूसरा ना ले ले। फिर ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, लाइन तोड़ रहे हैं, बैठे रहिए सुकून से, मेरी बोटी कोई नहीं लेगा। वो हमारे एक थे जानने वाले, तो वो मुर्गी की गर्दन की बोटी पसंद करते थे, नेक जो अमूमन लोग नहीं खाते, और जहाँ पूरी मुर्गी पकती है उसमें गर्दन होती है, अब तो मुद्दत ही हुई है देखे हुए भी कि वो होती भी नहीं, तो वो जब भी कोई खाना होता था ना आराम से बैठे रहते थे। लोग कहते भाई तुम क्यों नहीं डाल रहे, कह रहे थे मेरी बोटी महफूज है, मेरी कोई नहीं लेगा, क्यों, कि वो किसी गरीब ने खानी नहीं। अब सोचिए आप, जरा सोचिए, अब ये बात मैंने की है तो चले मैं उनके लिए इसको सदका जारिया भी बना दूं। आप क्यों लेग पीस पे नजर रखते हैं? शुक्र क्या है कि आप गर्दन की बोटी को अपनी पसंद बना लें, थोड़े पे राजी हो जाए, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, जो है बस वही अच्छा है। फिर आप फील करेंगे कि आपको अल्लाह ताला के साथ जो कुर्ब महसूस होगा, दिल से आपके शुक्र निकलता है, आपके दिल को ही खुश करेगा, ये इकोसिस्टम है। دل کا شکر آپ کے دل کو خوش کرے گا، آپ کی زبان سے شکر نکلے گا آپ کے پورے جسم کو خوش کرے گا۔ یہ دل کے راستے نکلتا ہے پھر زبان پہ آتا ہے۔ دل کے خوش رہے، اللہ سے خوش رہے، اللہ جو تُو نے مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا، تیرے پہ میں بڑی خوش ہوں، میں تجھ سے بڑی راضی ہوں، پھر زبان سے اس کا تذکرہ کریں، اللہ کا میرے پہ تو بڑا ہی کرم ہے، الحمدللہ۔ کبھی نہیں کوئی بیمار بھی ہے نا، کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، مت کہ شکر ہے، بس گھٹنوں میں بڑی دردیں ہیں، ویسے ٹھیک ہوں لیکن آج کمر میں بڑی درد ہے، اور ویسے تو ٹھیک ہوں لیکن کانوں میں کچھ ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شکایتیں ہیں؟ آپ کسی کو یہ کہیں میں بیمار ہوں، بڑی تکلیف ہے ہر وقت جے، تو گویا کہ یہ کس کا فیصلہ تھا آپ کو بیمار کرنے کا؟ اللہ کا فیصلہ تھا، تو کیا آپ نے اللہ کی شکایت لگائی؟ کسی کا بچہ اس کو تنگ کرے یا اس کو ماں شوہر کی طرف سے کوئی بات آئے تو کیا ہم دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں کرتے رہتے ہیں؟ میرا شوہر مجھے پیسے نہیں دیتا، کھانا نہیں لاتا، یہ نہیں کرتا، کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اپنی عزت ہوتی ہے، کیوں کہیں کسی کو؟ ہاں برا لگتا ہے نا، میرا بچہ میری نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، میں کیوں کہوں کسی کو، میری انسلٹ ہوگی۔ تو اللہ کی ذات وہ رہ گئی ہے جس کے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے، جس سے سب سے زیادہ لیتے ہیں اس کو سب سے زیادہ برے لفظوں میں پیش کرتے ہیں۔ نہیں، آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اگر ہم اپنی قسمت پہ راضی نہیں ہیں نا، تو سمجھے کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کے شکر میں ڈوبیں گے، آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملے گا۔ آج کے دور کے ڈپریشن کا علاج ہی ہے کہ لوگوں کو حمد کرنا سکھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام معروف تھے، محمد اور احمد، کیا روٹ ہے دونوں کا؟ ہاں میم دال، حمد۔ اور امت مسلمہ کا نام جو تورات میں تھا وہ کیا تھا؟ حمادون، بہت زیادہ تعریف کرنے والے۔ حامد ہوتا ہے ایک لفظ، اور ایک ہوتا ہے حماد، بہت زیادہ تعریف کرنے والے۔ اور آج لگتا ہے کہ امت مسلمہ اتنی نہ شکریہ ہے، جو نعمتیں اللہ نے ہمارے ملکوں میں دی ہیں وہ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گی، جو آپ کو وہاں سہولتیں ہیں، جو وہاں سائشیں ہیں، پھر بھی دیکھیے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اچھل رہے ہیں کہ کسی طرح کونے سے کوئی پکڑ کے ہمیں دنیا کے کسی باہر کے ملک میں پھینک دے۔ یہ شکر عزت اللہ نے ہماری رکھی ہوئی ہے کہ ہم دور ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے پاس۔ جب لوگ ہمیں باتھ روم صاف کرتا دیکھیں گے ہماری ساری عزت گزر جائے گی۔ وہاں جاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں، آپ کو کپڑے تو نہیں استری کرانے، آپ کو کپڑے تو نہیں دھلانے؟ ان کو کیا پتا کہ ہمیں تو عادت ہی نہیں رہی ان چیزوں کی، ہم نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اس وقت دیکھیں تو ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ میں نے کسی سے کہا اور ان کا جملہ کہ پاکستان میں اور کسی چیز کی کمی نہیں، بس ایک چیز کی کمی ہے، شکر کی کمی ہے، لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ کی تعریف کریں گے شکر کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی بات جو ہے وہ پھر دل کے اندر سے نکلے گی اور زندگی میٹھی ہو جائے گی، شیرینی والی ہو جائے گی۔ پھر کون رب؟ رب العالمین۔ رب کا لفظ جو ہے نا، یہ رب یو ربی تربیتن، تربیت کا لفظ سنا ہوئے، کرتے بھی یہاں بچوں کی، استاد شاگردوں کی کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، ذرے کو کمال میں پہنچانے والا۔ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کو درخت میں کون بدلتا ہے؟ اللہ کی ذات بدلتی ہے نا۔ ایک نطفہ، پانی کا قطرہ، اس کو خوبصورت جیتے جاگتے بچے کی شکل میں کون بناتا ہے؟ اللہ کی ذات بناتی ہے۔ تو رب کون ہے جو ذرے کو کمال میں کمال پہ پہنچا دے؟ اللہ کی ذات نے میرے ساتھ کیا کیا کہ میں کچھ بھی نہیں تھی اور اس نے مجھے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ مرغی کے انڈے میں سے نکلتے ہوئے چوزے کو دیکھیں اور ایک پلی پلائی مرغی کو دیکھیں، کون ہے جس نے اس مرغی کے بچے کو ایک صحت مند مرغی میں بدلا؟ یہ رب کی ذات ہے، ہر لمحے یہی کر رہا ہے۔ کسان ایک بیج زمین میں ڈال کے بھول جاتا ہے، کون ہے جو اس بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں سے ایک جڑ کی شکل میں نکال کے ایک تنے کے طور پہ اس کا اظہار کرتا ہے؟ یہ وہی ذات ہے جو رب کی ذات ہے۔ ہم بھی تو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں ایک بیج ہی تھے نا، نہ ہم نے آکسیجن مانگی، نہ ہم نے دودھ مانگا، نہ پانی مانگا، بن مانگے ماں کے پیٹ میں کئی مہینے تک جس ذات نے کھلایا وہ ہے رب کی ذات۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کو سجا کر رکھ دیا کہ آؤ تم اس میں آ کے اب مزہ کرو، जैसे बच्चा दुनिया में आता है ना, तो उससे पहले ही घर सज जाते हैं, कमरे सज जाते हैं, अब तो न जाने क्या कुछ हो जाता है। अल्लाह ने इस कायनात को सजाया। आदम के दुनिया में आने से पहले ये कायनात इतनी खूबसूरत नहीं थी। ये नीली छतरी जो अब हमारे सर पे है, ये आदम की तखलीक के वक्त हुई। पहले तो धुआं था, ऊपर देखो तो खौफ आने लगे। कहीं आपको कायनात में कोई नक्श नहीं दिखेगा। ये सारा इख्तमाम किसकी तरफ से है? रब्बिल आलमीन की तरफ से, जो इंसान की जरूरियात ही नहीं, ख्वाहिशात भी पूरी करता है। सच है ना? यानी हमारी नीड्स ही नहीं, हमारी डिजायर्स भी पूरी करता है। नीड क्या होती है? खाना। और डिजायर्स क्या है? टेस्ट के लिए खाना। नीड तो यही थी ना कि जिस्म पे कोई मोटे कपड़े पहना देता बालों वाले, जैसे जानवरों को खाल पहनाई हुई है, हमें भी पहना देता। नहीं, हमारे लिए नरम सिल्क पैदा किया, रेशम के कीड़े को हमारी खिदमत के लिए लगा दिया कि जाओ मेरे बंदे को मोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते, इसको सख्त कपड़े अच्छे नहीं लगते, तुम इसके लिए रेशम के बुनो। और कॉटन, कपास के पौधे को कहा जाओ नरम नरम कॉटन उगाओ। ये रब की जात है, इतना प्यार करती है। रब के मानी में मालिक भी आता है, यानी रब मालिक को भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रब्बिल आलमीन क्या हुआ? आलिमों का रब। आलिम का जो लफ्ज़ है ना, ये अलमा से है, निशान लगाने को कहते हैं। झंडे को अरबी में अलम कहते हैं, दुनिया। और इसी लाम के नीचे जेर कर देंगे ना, तो मतलब क्या होगा? जानने वाला। आलिम, इल्म से। ये जो आलिम होते हैं ना, ये भी असल में कायनात पे निशानियां हैं अल्लाह की, झंडा, निशानी। तो आलमीन क्या हुआ? बहुत सारे जहानों का रब। कितने जहान है दुनिया में, कोई गिन सकता है? मछलियों का जहान, चिड़ियों का जहान, तोतों का जहान, जिन्नों का, फरिश्तों का, पहाड़ों का, दरियाओं का, यानी पूरी कायनात जो है वो भरी हुई है किस चीज़ से? मखलूकात से। 1,000 से ज़ायद तो मखलूकात कहते हैं कि सिर्फ जानदारों की किस्में। समंदरों के अंदर कितनी मछलियां हैं? रब क्या होता है हम सोचते ही नहीं है। हैं तो खुली आंखों से वो चीज़ें बाहर, लेकिन देखते नहीं है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी है। हम बर्फ नहीं देख रहे होते, हम दुकानों के शोकेसों में सजे हुए कपड़े देख रहे होते हैं, वो देख के तो हम कहते हैं वाह, लेकिन हम जमीन पर गिरी हुई बर्फ को देख के नहीं कहते कि वाह ये भी क्या चीज है। तो अल्लाह ताला रब्बिल आलमीन कह के हमें एहसास दिलाता है कि देखो तुम ऐसे ही दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि तुम्हारे पीछे कोई ताकत थी, कोई जात थी जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। तुम उसकी कदर करो, उसका हक अदा करो। और जितना इंसान रब की रबूबियत का एहसास रखेगा, उतना उसके दिल में शुक्र भी पैदा होगा, उतना अलहम्द भी पैदा होगा। फिर उसके बाद फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, बहुत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान। ये हैं दो लफ्ज़, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला को जो तारुफ अपने लिए पसंद है ना, वो यही है। कौन 99 नेम्स ले? कोई पूछ सकता है? कोई एथियस पूछे, अच्छा भी सुनाओ तुम किसको रब कहते हो? तो आप कहें कि वो उसके 99 नेम्स हैं? नहीं, बस आप दो लफ्ज़ बोल दें, अर्रहमान अर्रहीम, ये है मेरा रब। दोनों का एक ही मद है, रहम। और रहम किसको कहते हैं? मदर्स वूम को कहते हैं, यूट्रस, जिसमें बच्चा पलता है, यानी माँ के पेट का रहम। वो है अल्लाह की मोहब्बत। ये हैं वो जज्बे जो अल्लाह ताला ने दुनिया में रखे कि तुम्हारा अपने रब के साथ वो ताल्लुक है जो न्यू बोर्न बेबी का अपनी माँ से होता है। देखिए, माँ और बच्चे का लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा बड़े बिगड़े हुए गुस्ताख बच्चे भी आने लगते हैं। इससे बात समझ नहीं आएगी। अल्लाह ने अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो रहम से है, और रहम से न्यू बोर्न बेबी निकलता है, नौमलूद, नया पैदा होता हुआ बच्चा। जब तक बच्चे और माँ के ताल्लुक को नहीं समझेंगे ना, रहमान और रहीम का मानी नहीं समझ आएगा। माँ के जिस्म से दूध मिलता है, ठीक है? क्या बच्चे को माँ से दूध मांगना पड़ता है? तो पहला ताल्लुक क्या है कि न्यूली बोर्न को माँ से मांगना नहीं पड़ता, माँ खुद ही दे देती है। माँ किसी सिले की उम्मीद के बगैर बच्चे के लिए दर्द सहती है। माँ और बच्चे में क्लोजनेस होती है, कुर्बत का एहसास होता है। माँ गहरी नींद में भी होती है ना तो उठ जाती है। आप कह लें कि माँ अपने बच्चे के लिए नींद जो है ना वो अपनी कुर्बान कर देती है। ठीक है, माँ को चैन नहीं आता, माँ अपने गीले पे सो जाती है, सूखे पे बच्चे को सुलाती है। हाँ जी, बच्चा बीमार हो, बच्चा तो हो सकता है सो जाए, नींद की दवा खिलाई हुई है कुछ, उसमें थोड़ा सा असर है, लेकिन माँ को नींद नहीं आती। इसी तरह माँ बच्चे की तरबियत करती है, माँ बच्चे की ट्रेनिंग करती है। अब ये सारे नुक्तों को जमा करें, ये तो एक माँ थी ना, सिर्फ एक माँ। अब इसको 70 से, यानी 70 से, या 99, 99 से ज़र्ब लगाएं, तो ये है अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों का खुलासा है कि अल्लाह को अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है। एक मौके पे एक औरत की गोद से उसका बच्चा निकल के बाहर धूप में आके रोने लगा, और वो माँ बावलों की तरह देख फिर रही है कि मेरा बच्चा किधर गया, और जब देखा कि बच्चा धूप में रो रहा है तो जाके उसके तलवे चूम लिए। और अल्लाह के नबी सल्लम और आपके साथियों ने ये दिलसोज मंजर देखा तो आपकी भी आंखों में अश्क थे। कहा, साथियों अगर तुम में से कोई किसी को ये कहे कि यही माँ अपने बच्चे को आग के एक तन्नूर में फेंक दे तो मानोगे? कहा, नहीं मानेंगे। अभी तो हम देख चुके कि वो तो बच्चे के पाँव धूप में नहीं जलते बर्दाश्त कर सकी। तो कहा, फिर सोचो वो जात जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो अपने बंदे को आग में कैसे डालेगा। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला कहते हैं लोगो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। इन शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ। वकाना अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह तो बड़ा कदरदान है, बड़ी कदर करता है। छठे पारे की आखिरी आयत है ये। तो क्या पता चला कि अल्लाह की ज़ात बंदे से बड़ी मोहब्बत करती है। अब यहाँ हम थोड़ा सा फ़र्क पहले देखेंगे, चूँकि अभी हमने माँ और बच्चे की देखी, अल्लाह का भी यही ताल्लुक है। जैसे माँ और बच्चे में क्लोजनेस होती है ना, अल्लाह और बंदे के अंदर भी क्लोजनेस होनी चाहिए। अल्लाह को डरने की चीज़ नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई अवॉइड करने की चीज़ नहीं है। बच्चों जैसे हमारे जिंदगी में खौफ है अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, बच्चों को भी डराते हैं, देखो अल्लाह मारेगा। भाई क्यों मारेगा उस मासूम को? देखिए तकवा के लफ्ज़ में बचना भी होता है और डरना भी होता है, बचने की चीज़ नहीं। मसलन ये इलेक्ट्रिक वायर है, आप इससे बचेंगे, अवॉइड करेंगे, इसको हाथ नहीं पकड़ेंगे, तो क्या अल्लाह से डरना ये है कि अल्लाह से अवॉइड करें? नहीं, अल्लाह के तो दामने रहमत में अपने पनाह लेनी है। जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता भी नहीं, इसी तरह अल्लाह भी बिन मांगे रिस्क देता है कि नहीं? किसी ने सुबह उठ के कहा कि अल्लाह ताला आज कुछ खाना भेज, और रिस्क सिर्फ खाना और पीना भी नहीं है, सांस, स्टमक, दिल, दिमाग, पूरा जिस्म, इसके अंदर फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। बच्चे के दुनिया में आने से पहले उसकी पूरी कहानी जो डीएनए के अंदर लिख के रख दी। नाम सुना होगा आपने डीएनए का? आज उसकी बेस पे बच्चों को चेक किया जाता है कौन किसका बच्चा है। किसी को नहीं पता कि माँ के पेट में उस डीएनए और उन क्रोमोसोम्स पे जो बच्चे की पूरी शख्सियत को बनाते हैं उसमें ये सारी बातें कौन लिख के आता है। और साइंसदान कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन एक इंसान के बारे में उस डीएनए पे लिखी हुई है ना, अगर उसको कोई कागज़ों पे लिखना चाहे तो कई टन टन वजन कागज़ इकट्ठा कर लें, कितने लाखों लफ्ज़ लिखें, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो सकती जो उस डीएनए पे लिखी हुई है। आंखें कैसी, कान कैसे, रंग कैसा, आते कैसी, इसकी अंदर जिस्म कैसा, आप एक एक उसको खोल के देखें, हमारे जिस्म के अंदर पूरे खजाने हैं। इंसान का जिस्म कहते हैं एक आलम है, छोटा आलम असगर है, पूरी इसके अंदर कहानी है, ये ज़ात अल्लाह की है। फिर अल्लाह ताला बंदे की तरबियत भी करता है। माँ क्या करती है? बच्चे को तकलीफ से बचाती है। ये बड़ा बारीक सा नुक्ता है। देखिए कि हम सोचते हैं रहम का मतलब क्या है कि बच्चे के लाड कर करके बिगाड़ दो। एक माँ है जो अपने बच्चे को उसकी हर बात पूरी कर देती है। वो जो मांगता है दे देती है। कोक मांगी तो भर के ग्लास दे दिया, चॉकलेट मांगा तो भर के दे दिया। दूसरी माँ कहती नहीं चॉकलेट नहीं, दूध नहीं, कोक नहीं पियोगे, दूध पीना पड़ेगा, चॉकलेट नहीं खजूर खाओ। बज़ाहर किस माँ की मोहब्बत ज़्यादा लग रही है बच्चे की नज़र में, पहले की, लेकिन दूसरी माँ कौन है जो चाहती है कि बच्चे के दांत खराब ना हो, उसके जिस्म में इतनी चीनी ना चली जाए कि वो हाइपर हो जाए और वो बाद में बीमार हो और डॉक्टर के पास जाए। ऐसी है ना, बाज़ दफ़ा बच्चे इसको समझ नहीं पाते। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के रहम का ये तकाजा है कि दुनिया में हम पे कोई मुश्किल आए। क्यों? ताकि उस मुश्किल के नतीजे में अल्लाह ताला हमें आखरत की मुश्किलों से बचाए। एक छोटी सी मुझे किसी ने कोटेशन भेजी और इत्तफाक से मुझे याद आ गई, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बच्चे की फीलिंग्स थी। बच्चा सोचता है कि जब मेरा बाप मुझे मारता है तो मेरी माँ मुझे बचाने आ जाती है ना। माँ की आदत होती है खुद जितना मर्जी मार ले, और अगर उसी बच्चे को कोई दूसरा हाथ भी लगाए तो उनको गुस्सा आने लगता है। तो एक बच्चा सोचता है कि जब मेरा बाप मुझे मारता है तो मेरी माँ मुझे बचाती है। चलो मैं ज़रा ये देखता हूँ कि जब मेरी माँ मुझे मार रही होगी तो मेरा बाप मुझे बचाने आता है। अब बच्चा था ना ये सोचने लगा, कहता है मैं जान के अब कुछ ऐसे काम करता हूँ कि मेरी माँ मुझे मारे, फिर देखूँगा कि बाप मारता है कि नहीं। खैर, उसने इस तरह के काम करने शुरू कर दिए। माँ ने कहा कि आओ बेटा खाना खा लो, मैं नहीं खाना खा रहा। माँ ने खाने की दावत दी, उसने खाना नहीं खाया। माँ ने कहा कि मुझे ज़रा वो चीज़ पकड़ा दो, ये अपनी जगह से नहीं उठा। माँ ने कुछ नहीं कहा। अब ये कह रहा है माँ कुछ कह ही नहीं रही। खैर, माँ ने कहा कि चलो नहा लो, मैं नहीं नहा रहा। माँ ने कहा कि थोड़ा स्कूल का काम कर लो, नहीं कर। किस्सा मुख्तसर, ये जान जान कैसे काम कर रहा है कि माँ उसको मारे और बाप बचाता है कि नहीं बचाता। कहता है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि मेरी माँ मुझे मारे, जो मैं कर रहा था ना उसके बाद मेरी माँ मेरे पास आई, प्यार से मुझे अपने पास बिठाया, मेरे बालों में उंगलियाँ फेरी, कहने लगी बेटा तुम बीमार तो नहीं हो आज, तुम्हारी तबीयत ठीक है, माँ ने मारा ही नहीं। फर्क है ना, जिस तरह माँ नहीं मारती ना अल्लाह भी नहीं मारता, क्योंकि वो अर्रहमान अर्रहीम है। माँ बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है, पहले टाइम लेती है, बिल्कुल मासूम बच्चा, फूल, खुद भी सख्त हाथ ना लगाए, लेकिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है, फिर उसको जाके इंजेक्शन लगवाती है, वैक्सीनेशन। क्यों लगवाती है? कि मेरे बच्चे को टाइफाइड ना हो जाए या उसको मलेरिया ना हो जाए, कोई भी चीज़। अब जब इंजेक्शन लगता है ना तो बच्चे को बुखार हो जाता है रिएक्शन से। कोई पूछे कि माँ कितनी जालिम है, खुद बच्चे को पूरी कार्रवाई करने के बाद डॉक्टर पे ले गई, पैसे दिए ताकि बच्चे को बुखार चढ़े। नहीं, क्यों दिया? ताकि बच्चे को ये बुखार चढ़ा तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसको चिकन पॉक्स निकल आए तो वो नहीं संभाल सकूंगी। अल्लाह ताला भी बंदे के ऊपर ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलात डालता है कि जिसके नतीजे में एक बंदा आने वाली बड़ी मुश्किलों से बच जाता है। तो इसलिए बीमारियों का आना भी उसकी रहमत, परेशानियों का आना भी उसकी रहमत, दुखों का मिलना भी उसकी रहमत, उसकी तरफ से हर तकलीफ और आजमाइश रहमत है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि ये रहमान और रहीम ये दो क्यों आ गए भाई, एक ही काफ़ी था। फ़र्क क्या भाई, एक ही बात है ना। आप उर्दू में हम कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और फिर आप कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार और मोहब्बत करती हूँ, तो आप कहते हैं खाली प्यार ही बहुत था। नहीं, इन दोनों में फ़र्क है। रहमान का जो लफ्ज़ है ना, रहमान, तूफान, हे जान, फौलान, एक वज़न होता है इसमें, हर चीज़ ऐसे जोश वाली होती है, एकदम जोश आता है। और रहीम, रहीम, फ़ईल, इसमें दवाम है। तूफान के, कि किसी पे रहम आके आपको इतना जोश आए कि आप उसकी मदद के लिए चल पड़े। लेकिन रहीम में क्या है कि फिर वो जज्बात आपके अंदर बाकी, बाद में भी रहे, बाद में भी बाकी रहे। मसलन आप देखिए, किसी पे रहम आता है आपको, जलजला आया, लोगों को बहुत रहम आया, लोगों ने वहाँ मदद भेजी, उनके बच्चों को अडॉप्ट किया। अब 2 साल गुजर गए, साल गुजर गए, आज वो जज्बात ख़त्म हो गए ना, बस जोश आता है और ख़त्म। मुस्लिम्स को भी आ जाता है, नॉन मुस्लिम्स को भी आ जाता है। जोश का आना क्या है? रहमान। अब हम तो सो जाते हैं ना उसके बाद, लेकिन अल्लाह ताला आज भी उनको खिला रहा है। ये है रहीम, दवाम, कंटिन्यूटी, मुसलसल, के अल्लाह ताला की जात को बंदों पे रहम जो आता है ना, ये जोश कभी ठंडा नहीं होता, और अल्लाह ताला उनको बाद में भी प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं हुआ कि जोश में आके ये कायनात बना ली और अब जोश ठंडा हो गया तो जगह जगह देखें गंदगी पड़ी हुई है, कहीं बारिश नहीं हो रही, डिसऑर्गेनाइज्ड है। कभी आपने सुना किसी हिस्से की जमीन ने फसलें उगाना छोड़ दी? थक गया अल्लाह ताला, खत्म, नो मोर, मरते हैं तो मर जाए। पूरी कायनात रेनोवेट होती है, हर 6 माह के बाद जमीन बदलती है, मौसम बदलते हैं, रात बदलते हैं, दिन बदलते हैं। क्या इस कायनात में आपको कहीं भी कोई पुरानापन दिखता है? हम घर बना लें, आज चमक रहे हैं, साल बाद कम चमक होगी, 6 माह बाद कुंडियाँ टूट जाएंगी, साल बाद उसके दरवाजे उखड़ जाएंगे, 4 साल बाद लगता है कि ये घर खंडहर है। इस कायनात को देख के लगता है, पूरे आसमान को देखें, अल्लाह ताला कहते हैं फरजिल बसरा करवतैन यनकलिब इलैकुल बसरा खासियं व हुवा हसीर। तो आसमान को देखो, एक दफा देखो फिर दोबारा देखो, तुम्हारी नजर थक के आ जाएगी, लेकिन तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई नक्स नहीं दिखेगा। कहीं से आसमान फटा हुआ सुराख, रंग उड़ा हुआ, आसमानी रंग कच्चा होता है ना, कपड़े भी सिलवाएं या धुलवाएं तो आसमानी रंग के कहते हैं कि ये धोना नहीं, और उसी आसमानी रंग का आसमान कितने सौ साल हो गए और वैसे का वैसे चमक रहा है। ये अल्लाह की शान है, क्यों? कि उसने सारी चीजों को रखा हुआ है, 100 हिस्सों में से एक हिस्सा इस दुनिया में दिख रहा है, और 99 कल ईमान वालों के साथ क्यामत के दिन वहां होंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इस तरीके से एक इंसान का हाल सही रखता हूँ, इस बात का इंतजार नहीं करता कि इंसान मुश्किल में पड़े, पहले ही उसके सदे बाप कर देता हूँ। जैसे माँ ने इंजेक्शन क्यों लगवाया कि बच्चा बीमारी से बच जाए, इसी तरह अल्लाह ताला दुनिया में यही करते हैं, हम पे छोटी छोटी मुश्किलें डालते हैं, आजमाइशें डालते हैं। क्यों? अल्लाह को पता होता है कि इस आजमाइश के पीछे बड़ी खैर है। जब हम उस छोटी सी आजमाइश पे खुश हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें बड़ी खैर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे माँ बच्चे को कहती है सुबह उठ के ब्रश करो, उठो मुंह धो लो, साबुन से मुंह धोती है, बच्चा रोता है, रोना चाहता है ना, लेकिन माँ को पता है कि अगर ये आज ये नहीं करेगा ऐसे काम तो कल इसको नुकसान होगा। तो आप कह सकते हैं ना कि माँ का इन बातों पे मजबूर करना, ये माँ की बेरहमी नहीं है, बल्कि माँ के इल्म की बुनियाद पे है। इल्म है माँ को कि अगर ये अपना ख्याल नहीं करेगा तो नुकसान पाएगा, इसी तरह अल्लाह ताला के इल्म में होता है कि क्या हमारे साथ होना चाहिए और क्या नहीं, इसीलिए वो ये सब कुछ करता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि माओं का लफ्ज़ सुनते ही साथ ही एक तसव्वुर आता है हमारे जहन में, मजबूर। लफ्ज़ सुना वे, माएँ तो जी मजबूर होती हैं, और अल्लाह रहम करे आज के दौर की माएँ वाकई बड़ी मजबूर दिखती हैं। कब? जब बच्चों का कद माँ के कद के बराबर होने लगता है। पहले माएँ बड़ी रोब वाली होती हैं, जोश से बात करती हैं, मेरे बच्चे, मुझे पता है ये ऐसे नहीं करते। ज़रा बच्चा बड़ा होता है तो माँ कहती है अच्छा, कसम नहीं दे सकते, और जरा बच्चे का कद जब माँ से भी बड़ा हो जाए तो फिर माँ को ऊपर देखना पड़ता है ना। सोचने की बात है, अल्लाह की जात के साथ मजबूरी नहीं है, ये फर्क है, क्योंकि बाज़ लोगों ने इसे बहुत मिसअंडरस्टूड किया। नाउज़ बिल्ला, जैसे माएँ मजबूर हैं, अल्लाह ताला भी मजबूर है, वो मजबूर नहीं है, इसीलिए उसने साथ ही कह दिया कि मालिकी यौमिद्दीन, कहीं ऐसा ना हो ढीले हो जाओ, अर्रहमान अर्रहीम को सोचते सोचते इतने ढीले ना हो जाओ कि अल्लाह की जात तो बस प्यार ही प्यार है, उसमें कुछ नहीं है, नहीं बल्कि वो तुम्हें पकड़ भी सकता है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत मलकियत की रखी। मालिक का लफ्ज़ जो है ये मलक से है, मीम लाम काफ से, ایک لفظ ہوتا ہے مالک الف کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے ملک. مالک کیا ہے؟ مالک بھی ہوتا ہے انسان اس چیز کا، اور اختیار بھی رکھتا ہے کہ اس کو تبدیل کرے، ٹھیک ہے. جبکہ لفظ ملک جو عموماً ہمارے ہاں بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ملک ملک فہد، آپ نے سعودی عرب کبھی گئے ہوں تو دیکھا ہوگا کہ اس طرح ان کے بادشاہوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. ملک میں ملکیت تو ہوتی ہے مگر اختیار نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں لفظ آتے ہیں، ملک بھی آتا ہے مالک بھی آتا ہے. لفظ ملک میں گلیمر زیادہ ہوتا ہے لیکن اختیار کم ہوتا ہے، جبکہ مالک لفظ ایسے ہی ہے بس دیکھنے میں، جیسے مالک مکان، لیکن اس میں اختیار بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یہ کون سا دن ہے بھائی؟ 7 دن تو ہم نے سنے ہوئے ہیں، ہفتہ اتوار پیر، یا سیٹرڈے سنڈے منڈے. تو یوم الدین کون سا ہے؟ یہ بدلوں کا دن ہے. یوم کہتے ہیں دن کو، اور دین کا لفظ جو ہے نا دال یا نون سے ہے. اس کو اب 2-3 ڈفرینٹ طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلا اس کے اندر مطلب ہوتا ہے غلبے اور تسلط کا، غلبہ ڈومیننسی، تسلط یعنی اللہ تعالیٰ آکیوپائی کرتا ہے کسی ذی اقتدار کی طرف سے. اسی طرح دین کا دوسرا معنی ہوتا ہے اطاعت اور بندگی، صاحب اقتدار کے سامنے جھک جانے والے کی جانب سے. تیسرا مطلب ہوتا ہے قاعدہ اور ضابطہ، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرانا، طریقہ جس کی پابندی کی جا سکے. اور چوتھا معنی ہے محاسبے کا، محاسبہ فیصلہ اور جزا سزا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چاروں ہی چیزیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو ہم کہتے ہیں کہ غلبے اور تسلط کا مالک اللہ ہے، اطاعت بندگی اسی کے واجب ہے یعنی ہم اسی کی اطاعت کریں. قاعدے اور ضوابط سے مراد یہ ہے کہ وہ آرگنائزڈ رب ہے، ایسے ہی نہیں کائنات کا نظام چل رہا کہ بس ایک بھیڑ چال ہے اور وہ ختم ہو گئی. اور مالک یوم الدین کا جب آخری معنی کرتے ہیں تو وہ محاسبے والے اور فیصلے والے دن کا مالک ہے، کہ جس دن فیصلے ہوں گے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت کا دوسرا نام بھی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عمل کا دن نہیں ہے، وہ بدلوں کا دن ہے. عمل آج کرنے ہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کا اپوزٹ ہے یہ دارالدین یا دین، دین کا یعنی بدلے کا دن. جو لوگ آج سوئے رہیں اور کل جا کے وہاں کچھ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بیکار ہیں. ایسی ہے جیسے یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، ہم سب امتحان دے رہے ہیں. عموماً 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا ایگزامینیشن ہال کے، اس دنیا کے بھی 3 ہی گھنٹے ہیں، ایک گھنٹہ بچپن کا ہے، ایک جوانی کا ہے اور ایک بڑھاپے کا ہے. اور آخرت کیا ہے؟ رزلٹ کا دن ہے، آپ کی گریجویشن ہے. اس دن سب کے سامنے آپ کی زندگی کھلے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے میں آج کا مالک ہوں نا ویسے ہی میں کل کا مالک بھی ہوں. تم رحمان اور رحیم کے لفظ میں کھو کر اللہ تعالیٰ کے الحسیب اور الرقیب اور مالک ہونے کو بھولنا چاہو. یہ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں ظالموں کی پکڑ ہو اور کام کرنے والوں کو ان کے بدلے دیے جائیں. چلیے اللہ کے لیے کوئی مثال تو ہے نہیں، لیکن ہم اپنی سمجھ کے لیے لفظ مالک یوم الدین کا تقابل کرتے ہیں جج کے ساتھ. آپ میں سے کسی نے لاء پڑھا ہوا ہے؟ لاء جو ہوتا ہے، نہیں پڑھا ہوا، دیکھا تو ہوگا نا فلموں میں، تو دیکھا ہوگا نا آرڈر آرڈر آرڈر. ہاں جج جو ہوتا ہے اس میں عموماً کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ فیصلہ صحیح کرے، دونوں فریقین کی بات جانے کرے. اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ جج سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ مثلا حالات کا پورا صحیح علم نہیں تھا، جس نے بات کی اس کو وہی سمجھ آ گئی. ہاں پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ جج کے دل میں کسی ایک شخص کے لیے تعصب ہو سکتا ہے، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا، وہ کہتا ہے میں نے اس کو ہروانا ہی ہروانا ہے، یا کسی کی حمایت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جج فیصلہ دے سکتا ہے، اس کو نافذ نہیں کر سکتا. اوپر سے اگر گورنمنٹ کے کوئی آرڈرز آ گئے تو وہ اس میں بات نہیں اپنی کر سکتا. پھر اسی طرح پریشرائز ہو سکتا ہے. اب یہ چاروں صفات جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی جج غلطی کرتا ہے نا، آپ لائیے اس کو اللہ کی ذات پہ. پہلی بات ہے کہ جج کو حالات کا علم نہیں ہوتا, تو اللہ کی ذات ہے العلیم بذات الصدور, وہ تو سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. وہ کل قیامت کے دن غلطی کیسے کرے گا؟ تو اپنے دل سے ساری بات نکال دیں کہ کہیں میں دیکھنا غلطی سے جنت میں پہنچ جاؤں گی, اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیسی تھی, وہ دیکھنا مجھے جنت میں پہنچا دے گا. اسی لیے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر کی اصلاح کرو. نہیں, وہ ایک بڑی پیاری روایت ہے, آپ کو کہیں پوری کوٹ کراؤں گی. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی تھی کہ ابو ذر کمر کو مضبوط کر لو, کشتی مضبوط کر لو, سمندر بڑا گہرا ہے. اور اس کے اندر ایک جملہ تھا کہ اپنے اندر کی اصلاح کرو, اس لیے کہ جانچ پڑتال کرنے والی ذات بڑی باریک بین ہے. وہ ہمارے اس وقت اس عمل کو نہیں دیکھے گا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ یہ بھی دیکھے گا کس نیت سے پڑھ رہے ہیں, وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کون نہیں آیا. ہم کہتے ہیں فلاں نہیں آیا, دیکھا کتنے کیئر لیس ہیں, دیکھو ان کو دنیا کتنی پیاری ہے, قرآن نہیں پڑھ رہے اور باہر بازاروں میں پھر رہے ہیں. اس کو ان کے دلوں کے اندر مچلتی ہوئی ساری باتوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آ پائے. اصل بات یہ کہ اپنے اندر کی اصلاح کی جائے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جج کے اندر تعصب ہو سکتا ہے, جبکہ اللہ کی ذات العادل ہے, السمد ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ عدل کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو اس لیے بخش دے کہ تم مسلمان ہو, کسی کو اس لیے بخش دے کہ تم گورے ہو اور تم کالے ہو, نہیں, بے لاگ عدل ہے. پھر اس طرح دیکھیے, نافذ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی جج کے پاس, اور اللہ کی ذات تو القدیر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, المقتدر ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پریشرائز ہونے والی جو بات تھی, تو اللہ کو کون پریشر رائز کر سکتا ہے, وہ تو خود سب سے غالب ہے, العزیز ہے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ پکڑے جانے کا احساس انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. دنیا میں کچھ ایسے کام ہیں آپ وہ کریں, آپ کو دنیا کی کوئی عدالت نہیں پکڑے گی. مثلا آپ کسی کی غیبت کریں, کیا آپ کے اس ملک میں غیبت کرنے کی کوئی سزا ہے؟ کسی کو تانا دیں کوئی سزا ہے؟ آپ جھوٹ بولیں کوئی سزا ہے؟ نہیں ہے. تو ان سارے کاموں کے کرنے والوں کو کہاں پکڑا جائے گا؟ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ان کو قیامت کے دن کے اندر پکڑا جائے, تاکہ ان کو ان کے بدلے ملے. اس طرح دنیا میں آج آپ بہت اچھے کام کرتے ہیں, کیا ہر چیز پہ آپ کو انعام ملتا ہے؟ آپ نے گاڑی بالکل ٹھیک جگہ پہ کھڑی کی, آپ نے ٹکٹ لیا, آپ نے وہاں پے کیا, آپ کو کوئی انعام ملا؟ کوئی انعام نہیں ملا. آپ نے رول کو فالو کیا, کوئی انعام نہیں ملا. تو کیا آپ کا یہ حق ختم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے دے گا. اسی لیے پھر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے اجر اور ثواب کی پوٹلیوں کو جمع کر کر کے پیچھے بھیجے گا. دنیا کی کوئی عدالت مکمل انصاف نہیں کر سکتی. کوئی ایک شخص ایک کو قتل کرتا ہے, جج کہتا ہے اس کو مار دو, قتل کے بدلے میں قتل ہو گیا. ایک شخص چار لوگوں کو مارتا ہے, اب اس کے انصاف کیسے کریں گے؟ کوئی جج یہ کہ اس کو چار دفعہ مارو, بیوقوفی ہے نا. اب ایک نے بھی قتل کیا تو بھی مرا, اور 10 کا قاتل وہ بھی مرا. دنیا میں تو انصاف نہیں ہوا, لیکن مالک یوم الدین, دنیا میں ایک قتل کے بدلے تو قتل کروا دیا, باقی 9 قتلوں کا بدلہ وہاں دے گا. وہاں کے سب بڑے سخت ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ. اس لیے انسان کو بہت فکر کرنی چاہیے. جو قیامت کا احساس نہیں رکھتا, جو اپنے آپ کو وہاں نہیں دیکھتا, وہ دوسری طرف کیسے دیکھے گا؟ اور رب کو راضی کرنے کا احساس انسان کو سیدھا کرتا ہے.